नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएस योजना में तीन बड़े सुधारों की मंजूरी दी है।
इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों में राज्य के सभी निवासियों के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित रखने के लिए विधेयक अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखता है। विधेयक में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में रखने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। और खेलों में, न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट में एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। उधर म्यूनिक में ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।